सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जय उभुवणेकतिलो तिहुवणकलिकलु सधुवणवावारो सन्ति अरो सन्ति जिणो पक्कम अनुयोगकर्तारो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 15वीं पुस्तक, जिसमें वो शेष 18 अनुयोग द्वार है, यहाँ लिखा है संत कम्म गभ्येषु शेष 18 अनुयोग द्वारेषु, उसमें से निबंधन अनुयोग द्वार अपना हुआ है और अभी प्रक्रम अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है। कर्म का जो प्रचय उसको प्रक्रम कहा था, उसकी बात अभी विस्तार से बताएंगे। पहले सप्तभंगी की बात हम देख रहे थे, कल से हमने वो अभावों की बात देखी थी। कोई जीव द्रव्य को या वस्तु को सर्वथा सत मानते हैं, कार्य को भी, और कोई सर्वथा असत ही, असत में से कार्य की उत्पत्ति हुई ऐसा मानते हैं, कोई उभय भी मानते हैं, परंतु जिनागम में जो स्यादवाद से वस्तु का स्वरूप बताया है वही कैसा सच्चा है, इसको हमने विस्तार से कल देखा था। चार अभावों पर भी वो घटित करके उन्होंने बताया था। अभी हम पृष्ठ संख्या 32 पर आ गए हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा हम विशेषार्थ से फिर पढ़ते हैं 31 पृष्ठ पर से। देखो, उक्त प्रकार से सत असत उभय और अवाच्य रूप एकांत पक्षों में वस्तु सत असत स्वरूप है और कथनचित उसका कथनचित सत है कथनचित असत, यानी किसी अपेक्षा सत किसी अपेक्षा असत, परंतु एकांत पक्ष से सर्वथा सत है मानने वाले, वस्तु सर्वथा असत है मानने वाले, वस्तु सर्वथा सत असत रूप, जिस यानी जैसी वो सत है वैसी है असत, कोई अपेक्षा लगाए बिना उसको सत असत मानने वाले, और कोई अवाच्य रूप सर्वथा अवाच्य ही वस्तु ऐसा कहने वाले, तो कथन करना ही वाच्यता हो गई। तो इस तरह से ये जो एकांत पक्ष है वो कैसे दूषित है, उसमें क्या दोष है, उस दोषों को दिखाकर यहाँ इस कारिका के द्वारा, कौन सी, अभी हमने 16 नंबर की ऊपर की पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था, देखो हम अर्थ देखते हैं। हे भगवान, आपका अभीष्ट तत्व कथनचित सत स्वरूप ही है, कथनचित असत स्वरूप ही है, कथनचित सत असत स्वरूप भी है और कथनचित अवाच्य भी है। तो इसके द्वारा सप्तभंगी को प्रकट किया, उसमें बताया तो चार है परंतु चार में से सात भंग कैसे होते वो भी उन्होंने बताया था। आगे लिखते हैं, यद्यपि कारिका में चार ही भंगों का निर्देश है तथापि उसमें प्रयुक्त च शब्द के द्वारा शेष, हाँ, प्रयुक्त ने उसमें जो यूज हुआ है, हाँ, प्रयुक्त कोई जो शब्द लिखा है वहां प्रयुक्त किया है, उस च शब्द के द्वारा शेष तीन भंगों की भी सूचना कर दी गई है। अब सप्तभंगी किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कहते हैं, प्रश्न के वश एक ही वस्तु में विधि व निषेध की कल्पना करने को, उसी वस्तु में वो है पना और नहीं पना भी उसी वस्तु का बताएंगे। तो विधि और निषेध एक ही वस्तु में घटित करते बताते हैं, उसको सप्तभंगी कहा जाता है। वह नए विवक्षा के अनुसार ही संभव है, न कि सर्वथा। ये सप्तभंगी नय की अपेक्षा से ही सात अलग अलग भंग हो सकते हैं, सर्वथा सात प्रकार की नहीं कह सकते। वे सात भंग निम्न प्रकार है। कथनचित घट सत स्वरूप है, इसमें द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से विधि की कल्पना की गई, विधि यानी अस्ति, क्योंकि घटादिक सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से सत्स्वरूप ही है। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप से सत्स्वरूप है, अस्ति वाली है, हयाति है उसकी। यदि उन्हें अपने द्रव्यादिक की अपेक्षा सत न माना जाए तो फिर वे खर विषाण के समान वस्तु ही नहीं रहेंगे। खर विषाण नाम की कोई वस्तु नहीं है, वैसे इनको सत नहीं मानेंगे तो कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी। हाँ, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल स्व की अपेक्षा हो गई। दूसरा जो भंग है, कथनचित घट असत स्वरूप है, जो घट है वही घट किसी अपेक्षा नहीं भी है। तो जो है उसको नहीं कैसे कहते हो, तो वो अपेक्षा बताते हैं। इसमें पर्यायार्थिक नय की प्रधानता से प्रतिषेध की कल्पना की गई है, क्योंकि परकीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से घट असत ही है, ही लगाया। जब अपेक्षा बता दी जाती है तो हम ही लगाते हैं। क्या कहा, पहला पॉइंट कौन सा था, स्व द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा, स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत है, और परकीय द्रव्य क्षेत्र काल की भाव की अपेक्षा वो घट ही असत है। घट परमे नहीं है ये बात यहां नहीं कह रहे हैं, पर की अपेक्षा घट का अस्तित्व नहीं ऐसा कह रहे हैं, घट असत है। यदि परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा विवक्षित वस्तु को असत न स्वीकार किया जावे तो जिस प्रकार घट स्वकीय द्रव्यादि से सत है, उसी प्रकार वह परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा भी सत ही ठहरेगा। यानी घट अपने रूप से भी है और पर रूप से भी है, ऐसा मानने पड़ेगा। और वैसा होने पर यह घट है पट नहीं है, इस प्रकार का भेद न रह सकने से, क्योंकि घट घट है वो पट नहीं है, या पट की अपेक्षा घट ही नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। परंतु यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो घट पट सब एक दूसरे रूप हो जाएंगे, सबके सब स्वरूप हो जाने का प्रसंग अनिवार्य है। ये कल हमने अन्योन्या भाव में भी देखते, आत्मरूपता ऐसा कुछ कहा था ना, उसमें क्या शब्द आया था, वहां देखो, सर्वात्मकम, ये 11 नंबर की कारिका में आया था, सेकंड लाइन में देखो क्या लिखा था, भाव एकांते पदार्थ नाम, पहले चार अभाव पर घटा और फिर सर्वथा भाव स्वरूप अगर मानेंगे तो क्या होगा, अभावानाम अपन्नवत, अभावों का अभाव हो जाएगा। जो अभाव को ही 11वें नंबर का 28 नंबर पर है, 28 नंबर पर, पेज नंबर 28। क्या ये जो सिद्धांत है बहुत महत्व के है, चार अभाव के, और उसके द्वारा वस्तु स्वरूप पूरा सिद्ध किया है उन्होंने। तो ये 11 नंबर के उसमें क्या लिखा था देखो, उसका विशेषार्थ भी हम देखते हैं जरा फिर से दोबारा, नीचे वाला विशेषार्थ कि उन्होंने ये वहां पहले, हम पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट बताएंगे, सांख्यों का क्या मत है, वो तो सत्स्वरूप ही मानते हैं। हाँ, वो तो अभाव को मानते ही नहीं है, तो अभाव के न मानने से क्या क्या दोष होते हैं उस बात की वहां चर्चा की है। उन्होंने तो 25 तत्व स्वीकार किए हैं, एक है वो पुरुष है, वो तो है कायम, और दूसरा है वो प्रकृति है, और वो एक दूसरे रूप होती रहती है। प्रकृति से महान नाम का तत्व होता है, महान से अहंकार होता है, अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रिया, उसके बाद 5 कर्म इंद्रिया होती है, और फिर उसके तन्मात्र होते हैं, मन होता है, 5 भूत होते हैं, इत्यादि उनके ये 25 तत्व बताए हैं। तो उनका कहना क्या है, कार्य हमेशा है ही है, सत्स्वरूप ही है कार्य को, यानी पर्याय को अलग से मानते ही नहीं है कि अवस्था नष्ट होती है और दूसरी उत्पन्न होती है, इसको मानते ही नहीं। वो कहते है ही है, वो सदैव विद्यमान ही है, बस उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। वो अंदर घट स्वरूप से पड़ी है और फिर उसका आविर्भाव हुआ यानी प्रकट हुआ और कभी ढक गया, इस तरह से उनका कहना है। ये बात घटित नहीं होती है, इसको ये चार अभावों के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया था। तो 29 पेज कर देखो ऊपर से छठी लाइन में अंत में यह लिखा ना, इस प्रकार सांख्य मत में सब कार्य सत ही है, यानी वो सर्वथा सत मानने वाले हैं। उनके इस एकांत पक्ष को दूषित करके करते हुए उपर्युक्त कारिका में कहा गया है, ये 11 नंबर के कारिका में कहा गया है, सब पदार्थों को सर्वथा सत मानने पर अन्योन्याभाव प्रागभाव प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव ये चारों ही अभाव नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो अभाव मानते ही नहीं, ये सत्स्वरूप ही सर्वथा मानते हैं। इनमें से महान व अहंकार आदि में प्रकृति का, उनके जो 25 तत्व है, एक पुरुष को छोड़कर प्रकृति महान अहंकार वगैरह वो एक दूसरे रूप से होते रहते, ऐसा उनका कहना है। तथा प्रकृति में महदादि का अन्योन्याभाव न रहने से, यानी उसमें कोई आपस में अभाव है ही नहीं, एक का दूसरे में अभाव नहीं रहने से, ये जो महान वगैरह है महदादि के महान वगैरह प्रकृति स्वरूप और प्रकृति है वो महदादि स्वरूप भी हो सकती है। इस प्रकार अन्योन्याभाव के अभाव में सबके सब स्वरूप हो जाने का प्रसंग अनिवार्य होगा। इसी प्रकार प्रागभाव यानी कार्य उत्पत्ति होने के पूर्व में कार्य का अभाव अगर नहीं मानेंगे, वो क्या कहते, कार्य उत्पन्न तो हुआ है परंतु वो जो था वही उत्पन्न हुआ है, उसका आविर्भाव हुआ है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे कि कार्य उत्पत्ति होने के पहले कार्य का अभाव था, यानी यदि हम प्रागभाव को नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि से ही विद्यमान है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो कहते महदादि के अनादिता का तथा प्रध्वंसाभाव को नहीं मानने से यानी विनाश के न रहने से उनके अनंतता का प्रसंग भी दुर्निवार होगा। कार्य जो है वो अनंत काल तक रहेगा, ये दुर्निवारता होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर कहते उनको जो प्रकृति और पुरुष में जो उन्होंने अलग अलग तत्व माने थे, तो उसमें भी उन्होंने पुरुष को भोक्तृत्व माना है और प्रकृति को कर्ता वाली माने, कर्त्री कहा है, परंतु उनको जो यदि हम अत्यंत अभाव नहीं मानेंगे तो प्रकृति भी भोक्ता हो जाएगी और वो पुरुष है उनके जो अपेक्षा से जो है वो कर्ता हो, यानी जो उनको रोल बताया था वो उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि वे एक दूसरे रूप हो जाएंगे। यानी किसी वस्तु का किसी द्रव्य का अपना लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि वो दूसरे रूप हो जाती है अत्यंताभाव नहीं मानने से, और निस्वरूपता हो जाएगी। निस्वरूप यानी पदार्थ अपने स्वरूप नहीं रहेगा, वो अन्य स्वरूप से बन जाएगा। ये बात उन्होंने आगे के विशेषार्थ में भी हम पढ़ते हैं उसको, क्योंकि ये सारी महत्व की बात है ना, दोबारा हो जाएगा तो क्या होगा। आगे वाला विशेषार्थ, कार्य के उत्पन्न होने के पूर्व में जो उसकी अविद्यमानता है, जो कार्य नहीं था और उत्पन्न हुआ है, उसको प्रागभाव कहा जाता है। और यदि इसको नहीं मानेंगे, प्रागभाव को नहीं मानेंगे तो क्या होता है, इसको न मानने पर घटपटादि कार्य अपने स्वरूप लाभ के पूर्व में भी, यानी स्वरूप लाभ हुआ है ना उत्पत्ति के पूर्व में भी विद्यमान ही रहना चाहिए। इस प्रकार प्रागभाव के अभाव में घटादि कार्यों के अनादि हो जाने का अनिष्ट प्रसंग आता है। प्रागभाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि का ठहरेगा। कार्य के विनाश का नाम प्रध्वंसाभाव है, अभी है कार्य और आगे के समय में वो नहीं है। हम परिभाषा याद किया था ना, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में जो अभाव है, इसे स्वीकार न करने पर चूंकि घटादि कार्यों का उत्पन्न होने के पश्चात कभी विनाश तो होगा ही नहीं, जो प्रध्वंसा भाव को नहीं मानता है तो वो घट अभी है तो वो कायम घट ही रहेगा, ऐसा कहेंगे। अतः वे उनके अनंत, अनंत यानी संख्या में अनंत नहीं, अंत रहित, उसको अनंत कहा, अनंत हो जाने का प्रसंग आता है। परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि घटादि पर्याय विशेषों का, पर्याय विशेष का, विशिष्ट पर्याय का, अपने उत्पत्ति के पूर्व में और विनाश के पश्चात उन आकार विशेषों में अवस्थान देखा नहीं जाता। घट होने के पहले उस रूप तो नहीं था, उस अवस्था नहीं थी उसकी, और घट टूट गया तो भी उसकी वो घट रूप अवस्था नष्ट हो गई है, तो उसका अवस्थान नहीं देखा जाता, यानी उसकी विद्यमानता नहीं देखी जाती। अतएव यह स्वीकार करना चाहिए कि पदार्थ सर्वथा भाव स्वरूप नहीं है, किंतु अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वे कथनचित भाव स्वरूप तथा दूसरे पदार्थों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कथनचित अभाव स्वरूप भी है। ये भाव और अभाव एक ही द्रव्य पर घटित किए हैं। ये भाव तो मेरा है और अभाव तो परद्रव्य का है, ऐसा नहीं। पर की अपेक्षा से मेरा ही अभाव है, पर का मेरे में अभाव है वो भी नहीं बात है। पर का मेरे में अभाव है वो तो पर में चला जाएगा अभाव। मैं अपने रूप से हूं और पर की अपेक्षा मैं नहीं हूं, ये बात यहां बता रहे हैं। यहां की जो अपेक्षा उसको समझना है हमको। अब देखो आगे, अन्यापोह यानी अन्योन्या भाव का उल्लंघन होने पर, यानी उसी को उसको नहीं मानने पर, यदि हम अन्योन्या भाव को नहीं मानते हैं तो विवक्षित कोई एक तत्व सब तत्वों स्वरूप हो जाएगा। आगे ये बताएंगे। अन्योन्या भाव उन्होंने पर्याय में देखा है और अत्यंत भाव में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के गुण रूप कहा है। अभी विशेषार्थ देखते हैं, ये आगे की कारिका नहीं हम पढ़ेंगे। यानी अन्योन्या भाव नहीं मानने पर क्या होगा, एक तत्व दूसरे तत्व स्वरूप हो जाएगा, उसका विशेषार्थ नीचे। विवक्षित स्वभाव की दूसरे स्वभावों में रहने वाली भिन्नता का नाम अन्योन्या भाव है। देखो यहाँ हम तो आज तक तो पुद्गल के बारे में ही अन्योन्या भाव लगाते आए थे, एक पुद्गल पर्याय की दूसरे पुद्गल के पर्याय में, वर्तमान पर्याय में अभाव। अब यहाँ क्या कह रहे, विवक्षित स्वभाव, जब यहाँ स्वभाव कहा तो पर्याय वाली पर्याय लेना, प्रकट पर्याय लेना। विवक्षित स्वभाव की दूसरे स्वभावों में रहने वाली भिन्नता का नाम अन्योन्या भाव है। उसके लिए दृष्टांत क्या दिया, जैसे गाय रूप स्वभाव यानी पर्याय, उसकी अश्वादी स्वभाव में रहने वाली भिन्नता। अत्यंत भाव आगे समझा रहे हैं, पर्यायों में लगाया। यहाँ भी पर्याय लिए परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यों की सभी द्रव्यों में लागू होगी वो। मुख्यतः यहाँ जो हम असमान जाति, जो लौकिक व्यवहार में जो हम जो कोई पर्याय दिखाई देती है उसकी बात होगी। पुद्गल के स्कंद दिखाई देंगे या असमान जाति द्रव्य पर्याय दिखाई देगी, वो एक स्वभाव का दूसरे स्वभाव में अभाव है, ऐसा कहना चाहते हैं। इस अन्योन्या भाव को न मानने पर गाय अश्व स्वरूप और अश्व गाय स्वरूप भी हो सकता है। इस प्रकार द्रव्य की सब पर्याय सभी पर्याय स्वरूप हो सकती है। समझाने के लिए दृष्टांत तो ऐसा मोटा देंगे ना, तो द्रव्य की पर्याय सभी पर्यायों स्वरूप हो जाएगी, अन्य द्रव्यों की पर्याय रूप हो जाएगी, अन्य भाव को नहीं मानेंगे तो। स्वभाव विभाव की बात नहीं, पर्याय को यहाँ स्वभाव का, हाँ जो प्रकट जो है वो। वो भी ले सकते हैं, या जो गाय रूप ही कहा ना, अश्वादी स्वभाव से भिन्न है, स्वभाव ने पर्याय ब्रैकेट में पर्याय लिखा उन्होंने। देखो ये इसका कंक्लूजन क्या लिखा है, देखो, अतएव द्रव्य की विभिन्न पर्यायों में परस्पर भेद को प्रकट करने वाले अन्योन्या भाव को स्वीकार करना ही चाहिए। अलग अलग द्रव्यों की जो अपनी अपनी पर्याय है, एक द्रव्य की पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय में अभाव है, उसी को यहाँ स्वभाव कहा है। अब अत्यंत अभाव की डेफिनेशन आगे बता रहे, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य संबंधी असाधारण गुणों के त्रैकालिक अभाव को अत्यंत अभाव कहा जाता है। इतनी स्पष्टता से इनकी डेफिनेशन अन्य कहीं नहीं मिली। ये तो चार अभाव का प्रकरण भी मैंने लिखा है उस कारण कार्य रहस्य में, फिर भी ये पता नहीं था कि 15वीं पुस्तक में इतनी चर्चा है अभाव के बारे में। वो तो हमने जो सीखा था, जो सिद्धांत प्रवेशिका में वगैरह, उसी के आधार से वो लिखा था। अभी किस किस के निकालेंगे। ऐसा होता है ना, जब कुछ लिखा जाता है और बाद में कितने पुस्तकें पढ़ने में आती तो ऐसा लगता है ये तो अभी बच्चों जैसा लिखा है। चलो, तो एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य संबंधी असाधारण गुणों के त्रैकालिक अभाव को अत्यंत अभाव कहा जाता है। जैसे पुद्गल द्रव्य में चैतन्य गुण का अभाव और जीव द्रव्य में रहने वाला रूपादि गुणों का अभाव। देखो ये महत्व की बात है ना, इसलिए आज दोबारा ले रहे इसको। इस अत्यंत अभाव को स्वीकार न करने से एक द्रव्य के गुणों का दूसरे द्रव्य में समवाय संबंध होने पर, यानी एक द्रव्य के गुण छूटकर दूसरे द्रव्य के साथ जाके मिल जाएंगे, समवाय संभव होने पर, संभव होने पर, समवाय होना या नहीं उसका वो एक रूप हो जाना दूसरे द्रव्य के साथ, संभव होने पर यानी पॉसिबिलिटी होने पर। क्यों ऐसे हो सकता है? क्योंकि अत्यंता भाव को नहीं माना। अत्यंता भाव क्या बताया? दोनों में त्रैकालिक अभाव, एक द्रव्य के जो असाधारण गुण है, साधारण गुणों की तो बात ही नहीं, हर एक में अपने अपने है ही है, तो असाधारण गुणों के दूसरे द्रव्य संबंधी असाधारण गुणों में वो त्रैकालिक अभाव है। तो ऐसा संभव होने पर क्या होगा? दूसरों के द्वारा कल्पित प्रकृति पुरुषादि रूप तत्वों का नियमित स्वरूप नहीं बन सकेगा। वो प्रकृति पुरुष रूप हो जाएगी, पुरुष प्रकृति रूप हो जाएगा। अतएव तत्व व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए अत्यंता भाव का भी अपलाप नहीं किया जा सकता। वस्तु व्यवस्था नहीं बिगड़ती है, परंतु मान्यता में जिन तत्वों को स्वीकार किया है उन तत्वों की व्यवस्था बिगड़ जाती है, अपने मान्यता में उलट पुलट हो जाता है सारा। तो इसलिए उन्होंने ये सर्वथा जो माने थे सत या सर्वथा असत, उसका निषेध करते हुए ये सारी जो सप्तभंगी के द्वारा सही क्या है उसको समझाया था। अभी हम आते हैं फिर शून्य एकांत में कुछ है ही नहीं, बस कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो आप बोल रहे हो ना, कुछ नहीं है क्या? यही तो, ये कितनी भ्रांति होती है लोगों की, बस सब शून्य ही है, ये कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले। यानी ऐसा भी नहीं कहते कि मैं हूँ और बाकी शून्य, ऐसा भी नहीं, सब कुछ शून्य ही है ऐसा ही कहते। तो कैसे वो मति भ्रांति होती होगी उनके, शून्य एकांतवादी कहा उनको। बुद्ध ये प्रचार होने में क्या है? एक खोटे मतों की स्थापना और उसका प्रचार, ये तो होता रहे अनादि से होता है, वो तो होता ही रहेगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही लगता है जब हम तत्व सुनते हैं, सही सुनते हैं, अरे ये बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। यानी हमें उन तत्वों के प्रति कितना अहोभाव आता है। अभी ये जो आपने मीमांसा लिखी है तो भगवान का ऐसा स्तुति किया कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए मानता हूँ कि आपके मत में ये चार अभाव बताए। वस्तु सर्वथा भाव स्वरूप नहीं है, अभाव स्वरूप भी है। अब आगे जाके बताएंगे, अभाव को मानेंगे भाव को नहीं मानेंगे तो शून्य एकांतवाद होने का प्रसंग आएगा। दोनों ओर से कथन किया है, दोनों के लिए कारिका बताई। ये पूरी आप्तमीमांसा में भगवान की स्तुति है, परंतु उसमें पूरे ही सिद्धांत और न्याय बताए हैं। कैसी गजब का उनका अभ्यास होगा, हमको तो सादी भाषा में बोलना भी कठिन होता है, उन्होंने तो काव्य में रचना की है उसकी। समंत भद्राचार्य की उसी से सिद्ध होता है। हाँ, उन्हीं को समझाने के लिए, क्योंकि आप ऐसा कहते हैं और अभाव नहीं मानते हैं, तो आपके जो मानने वाले तत्व है उसमें ये गलती हो सकती है। क्योंकि ये जो परमत का खंडन, ये आचार्यों के तो कितने ही ऐसे है ना, वो जो कथन होते हैं आक्षेपिनी विक्षेपिनी आदि जो कथन प्रकार होते हैं, तत्व कहने की भी जो पद्धति होती है, एक तो अपने तत्व बताओ ये, और दूसरा क्या है विक्षेपिनी, यानी वो परमत का खंडन करो। क्योंकि कितने अलग 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 उसमें मत कल्पना हो जाती है, तो ऐसी कोई कल्पनाएं जैनी नहीं कर ले। हमको परमत यानी परों को नहीं समझाना है, हमारी ही ऐसी झूठी कल्पना हो सकती है, इसलिए उसका खंडन करते हैं। हमें अपनी मान्यता सही करनी है ना, दुनिया को सुधारना है। हाँ,
यहाँ तो दूसरे को सिखाने को नहीं जाना है, अपने में ही ऐसी मान्यता हो सकती है। जैसे आपने कहा कि हमने चार अभाव नहीं जाने थे तो हम भी उनकी बात सही मानते थे, तो हम मानते थे नहीं, मान रहे थे, जभी तो हमको ये बात सही लगी ना, ख्याल में है ना, कि ऐसा ही है कि हमने भी कुदेव को गुरु शास्त्र को ही गुरु माना, लेकिन जब सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप ध्यान में आया, अरे ये मैं पहले ऐसे मानता था, यानी मानता था ये बात आ गई ना, ये बात सच्ची है, ये समझ में आया, तो वो बात झूठी है ये भी बात ख्याल में आती है। क्योंकि क्या है कि जैसा भाई साहब ने बताया कि जैन धर्म को समझने वाले या फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो उन्होंने एक डायरेक्ट बोल दिया क्या कि कम लोग मोक्ष जाने वाले है, अनंत जीव जाने वाले 608 कुछ समय के लिए, 6 महीने और 8 समय। इसके लिए कह रहे हैं कि भाई सत्य बात समझने के लिए जो पुरुषार्थ लगता है, कंसिस्टेंसी चाहिए बार बार इसको समझने की। हम तो ऐसा मान लेते कि आज सुन लेंगे फिर बस हो गया काम, नहीं होता है। आप 15 दिन के लिए छोड़ दो स्वाध्याय, सब भूल जाओगे जो कुछ आपने सीखा है, क्योंकि आपने
अभी हाँ, क्या वो तो है वो तो सामान्य कथन होता है। एक तो होता है जब भी हम प्राइमरी सीखते हैं तो बिल्कुल मोटी मोटी अपेक्षा लगाई जाती है, वो प्रवेशिका है ना, प्रवेश करने के लिए। अब हम प्रवेश करके थोड़े आगे बढ़े हैं तो इसलिए यहाँ कुछ और
बात ऐसे ना, उस समय आपके ज्ञान की पर्याय और आज के ज्ञान की पर्याय इसमें अंतर रहेगा ना, बढ़ता हुआ अंतर है ये,
मतलब अपना ही ज्ञान बढ़ता है, हम तो कहेंगे
ज्ञान बढ़ रहा है ना। अगले साल
देखो, ये 28 नंबर पेज पर हमने देखा था, 11 नंबर की कारिका में, वहां क्या कहा था, भाव एकांते पदार्थानाम, एकांत भाव स्वरूप मानते हैं पदार्थों को, उनके यहाँ क्या होता है अभावानाम अपन्नवात, वो अभाव का अपलाप करते हैं, अभाव को नहीं मानते, अभाव को उड़ा देते हैं, तो क्या दोष होते हैं, सर्वात्मकम यानी पदार्थ सर्वात्मक हो जाते हैं, और क्या होता है कार्य अनादि का ठहरता है, अनंत का होगा, सर्वात्मकम अन्योन्य भाव नहीं मानने से सर्वात्मक होगा, प्राग भाव नहीं मानने से अनादि का रहेगा, प्रध्वंस भाव नहीं मानने से अनंत का होगा, और अत्यंत भाव नहीं होंगे तो मानेंगे तो हाँ अस्वरूप तावकम निस्वरूप होने का प्रसंग आएगा। ये तो सर्वथा भाव वालों के लिए ये बताया। अब वो उसके आगे 2 कारिका 12-13 में उन्होंने वही 4 अभावों की चर्चा की। अब 14वीं कारिका में कहते हैं अभाव ये एकांत पक्षेपी, अब ये दूसरे कोई मत वाले हैं जो एकांत अभाव वाले हैं, ये शून्य वाले, शून्य मत वाले, वो सब अभाव स्वरूप ही मानने वाले, वो क्या करते हैं, भावापन्नववादी नाम, भाव का अपन्नव करते हैं। भाव यानी वस्तु सत है, अस्तित्व वाली है, उसके अस्तित्व का अपलाप करते हैं। तो उनके यहाँ क्या होता है, बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम, वो अपना तत्व मानेंगे कहेंगे तो कहने वाला कौन और वचन क्या, कुछ है ही नहीं ना, तो अपना पक्ष भी कैसे प्रस्तुत करेंगे, उनका वे भी अभाव स्वरूप है और वचन भी अभाव स्वरूप है, तो अपना पक्ष कैसा सिद्ध करेंगे। ख्याल है उन्हीं, वो ऐसा कुछ अटपटा तत्व मान लेते हैं कि उनकी मान्यता में, उनके कथन में वो स्वसंबंध, वो उनकी कल्पनाएं निराकरण हो जाते उसका अपने आप। अब कहते विरोधान नोभयैकात्म्यम, जो उभयात्मक मानते हैं, सत असत रूप मानते हैं एक साथ अपेक्षा बिना का, उनमें भी क्या दो क्या होता है, स्याद्वाद न्याय विद्विषाम और अवाच्य एकांत एपी, सर्वथा अवाच्य मानने वाले, कल बात होगी इसकी भी कि सर्वथा अवक्तव्य है, वस्तु अवक्तव्य ही है कहेंगे, तो इतना तो कहा ना आपने, तो ये तो बताया ना कुछ, तो उसके लिए दृष्टांत दिया था कि कोई मौन वाला बताता है मेरा आज मौन है, ये कह कर बताता है, तो उसका मौन कहाँ है वहाँ पर। ऐसे ये बातें चारों के बारे में बताई थी, और इसका सारा निषेध सप्तभंगी के द्वारा हो जाता है। वस्तु स्वरूप कथनचित यानी स्याद, किसी अपेक्षा से कैसा है, उसको सात अलग अलग नयों की अपेक्षा से उसको बताते हैं। ये सप्तभंगी में से हमने अभी पहला और दूसरा देखा था कि कथनचित घट सत स्वरूप है, कथनचित में यानी किसी अपेक्षा, कौन सी अपेक्षा, स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु सत है। दूसरा कथनचित घट असत स्वरूप है, तो परकीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वो वस्तु ही असत है, पर असत है ऐसी बात नहीं, जिसको हमने सत कहा था वही वस्तु अन्य किसी अपेक्षा असत है। देखो ये 31 पृष्ठ पर अंतिम लाइन हम पढ़ेंगे, यदि परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा विवक्षित वस्तु को असत न स्वीकार किया जावे, तो जिस प्रकार घट स्वकीय द्रव्यादि से सत है, उसी प्रकार परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा भी सत ही ठहरेगा, और वैसा होने पर यह घट है पट नहीं है, इस प्रकार का भेद न रह सकने से सबके सब स्वरूप हो जाने का प्रसंग अनिवार्य होगा। हम कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकेंगे दो वस्तुओं में, अतएव सबके सब स्वरूप यानी एक एक का सब स्वरूप, सभी चीजें सब स्वरूप हो जाएगी ऐसे, नहीं सबके सब स्वरूप नहीं, सबके सब स्वरूप, ये रबर है वो पेन रूप होगा, पेंसिल रूप होगा, पट्टी रूप होगा, क्लिप रूप होगा, ये क्लिप है वो भी अन्य सब रूप हो जाएगी, पेन भी है वो सभी अन्य सब रूप होगा, यानी कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ही नहीं रहेगा उसमें। हाँ सब स्वरूप, सबके ने सब, सभी का सब स्वरूप होने का प्रसंग आएगा, ये हिंदी में के लगाते हैं बीच में। अतएव अपने द्रव्यादि की अपेक्षा वस्तु जैसे सत है, वैसे ही परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा असत भी है, यह मानना ही चाहिए, यानी वस्तु ही सत है और वस्तु ही असत है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा भंग बताएंगे, कथनचित घट सत व असत यानी उभय स्वरूप है, उभय स्वरूप, उभय एकांत मानने वाले भी थे, तो किसी को प्रश्न होता है अरे उन्होंने भी उभय स्वरूप तो स्वीकार कहा था ना, जैसे अभी हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उभयाभाषी को देख रहे हैं, उसको लगता नहीं नहीं हम दोनों को स्वीकार करेंगे, परंतु वो कल्पना रूप से स्वीकार करता है, गलत भ्रांति रूप से स्वीकार करता है, वैसे यहाँ भी उसके वो जो उभय पक्ष वाले हैं वो सर्वथा उभय रूप है, किसी अपेक्षा सत और किसी अपेक्षा असत ऐसे नहीं, वस्तु सत और असत है ऐसा, हाँ यानी उनके यहाँ कोई अपेक्षा तो जैनियों की ही होती है, अपेक्षाकृत कथन तो जैनियों ने ही किया है, अन्य मतों में या तो कोई एक चीज को पकड़ के वस्तु सर्वथा वैसी ही है ये बात कहते हैं। तो ये तीसरे में कहते हैं कथनचित घट सत व असत यानी उभय स्वरूप है। अब ये उसकी अपेक्षा बताएंगे। यहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा क्रम से, क्रम शब्द महत्व का है यहाँ पर। दोनों ने लगाए ना, दोनों ने क्रम से लगाए। तो क्रम से विधि वो प्रतिषेध की कल्पना की है सत और असत की। हाँ? देखो द्रव्यार्थिक यहाँ बात की थी एक नंबर में, द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा विधि की कल्पना की है। तो घट है उसके लिए भी कल उदाहरण दिया था। देखो किस अपेक्षा है, वो पुद्गल है और मिट्टी भी है, उसकी अपेक्षा से घट जो था उसी का उत्पाद हुआ है। देखो हमने इसको पढ़ा था पहले, नहीं 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 उसके बहुत पहले हमने उसको देखा था। देखो पेज नंबर 23 निकालना, ये द्रव्यार्थिक क्या अपेक्षा है उसको। निकल पेज 23 में इन भंगों का अर्थ कहते ही लिखा है नीचे का पैराग्राफ, उसमें लिखा है कार्य कथनचित सत उत्पन्न होता है। ये द्रव्यार्थिक की अपेक्षा यहाँ लगा रहे, क्योंकि पुद्गल स्वरूप से और मृत्तिका आदि व्यंजन पर्याय रूप से भी सत द्रव्य की घट पर्याय स्वरूप से उत्पत्ति देखी जाती है। द्रव्य तो वही का वही है, द्रव्य की उत्पत्ति, ये द्रव्यार्थिक नहीं है, द्रव्य की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। क्या कथन है, जो द्रव्य था उसकी एक पर्याय रूप छोड़कर दूसरे पर्याय रूप से उत्पत्ति हो रही है, घट की ही उत्पत्ति हो रही है। यानी वो कौन सा द्रव्य की ही उत्पत्ति, घट की नहीं, मुझे द्रव्य की कहना है। पुद्गल द्रव्य है और मृत्तिका नाम का व्यंजन पर्याय, क्योंकि स्थूल पर्याय ना, लंबे काल वाली एक स्कंदन ही समझना है उसको। मृत्तिका जो परिणमन है, मिट्टी जो परिणमन है वो लंबे काल तक मिट्टी रूप से है, उसमें जो पुद्गल है उसका परिणमन अलग हो जाएगा बाद में। मिट्टी के परमाणु अन्य कुछ स्कंद रूप भी हो सकेंगे। व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं, लंबे काल तक कोई पर्याय स्थूल पर्याय रहती है उसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो पुद्गल पिंड है, क्या लिखा, पुद्गल स्वरूप से और मृत्तिका आदि व्यंजन पर्याय रूप से भी सत द्रव्य की घट पर्याय स्वरूप से उत्पत्ति देखी जाती है। वो द्रव्य की ही पर्याय रूप से उत्पत्ति हुई है। मैंने यहाँ की बात नहीं की, एक व्यंजन पर्याय है, लंबे काल तक व्यंजन पर्याय रही, मिट्टी रही, वो मिट्टी के परमाणु अन्य कुछ वर्गना रूप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अरे सोने रूप भी हो सकेंगे ना कुछ काल के बाद, शरीर रूप से परिणमित हो गया, अपने कारमण वर्गना हो जाएगी। पुद्गल परमाणु का तो कुछ भी हो सकता है, परंतु अभी वो मिट्टी रूप से है तो उसको व्यंजन पर्याय कहा, और पुद्गल द्रव्य तो है ही है। तो मिट्टी का घट होने पर भी मिट्टी तो रही वहां पर, मिट्टी का मिट्टी रूप तो है वहां पर भी, तो ये द्रव्यार्थिक नहीं है, द्रव्य वही का वही है, उसकी पर्याय रूप से उत्पत्ति हुई है, यह द्रव्यार्थिक नहीं लगा। ये ख्याल में है ना। और अभी जो हम पढ़ेंगे यहाँ उभय में तीसरे में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा, हाँ 32 पृष्ठ पर क्रम से विधि व प्रतिषेध की कल्पना की गई है। एक क्रम से बताया, क्योंकि एक साथ नहीं बता सकते, वो नहीं बता सकते वो अवक्तव्य में कहेंगे, बात ख्याल में आती है, नहीं आती तो पूछना, तो हम स्लोली जाएंगे। अच्छा आपका प्रश्न है द्रव्यार्थिक नहीं तो अभी समझ में आया, अभी पर्यायार्थिक नहीं नहीं समझ में आया। तो देखो उसकी बात यहाँ नहीं है, उसकी बात यहाँ नहीं है। मैंने तो आपको इसलिए इसको व्यंजन पर्याय क्यों कहा इसकी बात की। मिट्टी भी पर्याय है परंतु वो अनेक काल लंबे काल तक वो मिट्टी रूप से ही रहने वाली है, परंतु दृष्टांत में तो हम उसको द्रव्य समझकर ही समझाते हैं, परंतु इन्होंने डायरेक्ट पुद्गल को ही द्रव्य लिया है और मिट्टी को व्यंजन पर्याय कहा है। परंतु हम अन्य द्रव्य जब भी दृष्टांत के तौर पर लेते हैं, सोना है मिट्टी है, उसको द्रव्य मानकर समझाते हैं, क्योंकि मोटा दृष्टांत देंगे तो समझ में आएगा। जैसे कहते हैं ना सोना कायम है और उसकी अवस्था बदलती है, कुंडल होते हैं उसके कंकण होते हैं जो कुछ होते हैं, तो वहाँ सोने को हमने द्रव्य कहा था। अब यहाँ भी मिट्टी को द्रव्य कहकर आप पुकार सकते हैं, मतलब फिर भी उन्होंने पुद्गल को द्रव्य कहा और मिट्टी को व्यंजन पर्याय कहा, तो वे दोनों ही कायम रहे घट में। तो पुद्गल की घट नाम की अवस्था हुई, पुद्गल के मिट्टी नाम के जो व्यंजन पर्याय है मृतिका की, उसके अभी घट रूप से उत्पत्ति हुई, पुद्गल की ही घट रूप से उत्पत्ति हुई, यानी हमने द्रव्य को मुख्य करके कथन किया। द्रव्य पहले था कि नहीं था, अब भी है कि नहीं है, तो वो सत है, पहले भी सत था अभी भी सत है, इसलिए वो द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा सत है, वस्तु सत है, कथनचित सत है कहा। अब पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा असत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नहीं था वो उत्पन्न हुआ, पहले मिट्टी का पिंड था और अभी घट पर्याय रूप हुई। यहाँ पर्याय की मुख्यता से जो नहीं था वो उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको पर्यायार्थिक नहीं कहा। हाँ उसी में है 23 में ही, देखो आगे वाला तीसरी मिट्टी को व्यंजन पर्याय इसलिए कहा कि लंबे काल तक वो मिट्टी रूप से रहती है। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय से गुण पर्याय दो प्रकार के, देखो पर्याय जब कहते हैं तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय से मुख्य दो भेद होते हैं। द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं मालूम है आपको? हाँ नहीं, अनेक द्रव्यों की मिली जुली जो पर्याय है उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। हाँ कैसे कि समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय, अनेक समान जाति के कौन से द्रव्य ऐसे उनका बंध होता है पुद्गल का, तो स्कंद जो है वो समान जातीय द्रव्य पर्याय है, और असमान जातीय द्रव्य पर्याय में जीव और पुद्गल का मिलकर मनुष्य है, तिर्यंच है, नारकी देव है, ये द्रव्य पर्याय हुए। अब जो गुण पर्याय है, हाँ असमान हो गए कि अभी हम गुण पर्याय की बात कर रहे हैं। गुण पर्याय में दो भेद, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। गुणों की एक एक समय की जो पर्याय है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, और जो व्यंजन पर्याय है वो स्थूल पर्याय। अर्थ पर्याय एक एक समय की पर्याय को हम अर्थ पर्याय कहते हैं, सूक्ष्म होती है एक समय वाली होती है। अब जो स्थूल पर्याय है लंबे काल तक चलती है, जैसे मनुष्य पर्याय, मनुष्य में वो असमान जाति वाला द्रव्य पर्याय नहीं लेना, वो जीव की पर्याय है, अकेले जीव की मनुष्य रूप जो पर्याय चल रही उसको लेना यहाँ पर, तो उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। क्या ले? हाँ प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को, हाँ अकेले विभाव नहीं कह सकते, विशेष कार्य को। हाँ लंबे काल तक है, हम जन्म से अभी मरण तक ये नहीं, वहाँ अकेले जीव की लेना है। शरीर शरीर के साथ हमने असमान जाति द्रव्य पर्याय में ले लिया उसको, अभी हम उसकी अभी चिंता नहीं हमको, हम गुण पर्याय को देख रहे हैं, एक ही द्रव्य की पर्याय को देख रहे हैं। हमारा जो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख की जो एक एक समय पर्याय हो रही है वो है हमारे अर्थ पर्याय, और उसमें ऐसा भी कहेंगे प्रदेशत्व गुण का जो कार्य हो रहा है अभी मनुष्यकार रूप जो है इधर जीव वहां पर, परंतु उसको लंबे काल तक वो मनुष्य 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 रूप से है, तो हम कहेंगे ये उसकी व्यंजन पर्याय है।
देखिए पहले हमने ऐसा सीखा था कि जो गुण पर्याय है उसके दो भेद है, एक द्रव्य पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। तो उस समय
व्यंजन और अर्थ,
अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय में हमने ऐसा सीखा था कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य जो पर्याय है, अन्य गुणों की पर्याय है, उसको अर्थ पर्याय कहेंगे। और जो व्यंजन पर्याय यानी जो उस गुण के कारण जो द्रव्य को आकार रहता है, उसको व्यंजन पर्याय ऐसा हमने सीखा था। लेकिन अभी जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये विवक्षा लगती है कि अर्थ पर्याय यानी एक एक समय की जो पर्याय है कोई भी गुण की, उसको अर्थ पर्याय कहेंगे, और जो लंबे काल तक जो वही पर्याय रहेगी उसको यहाँ व्यंजन पर्याय कहा है।
इस चिरस्थाई पर्याय कोई भी पुद्गल रूप से तो अनादि अनंत है, परंतु मिट्टी रूप से कितने काल रहेगी बोलो? हाँ क्या कहते हैं,
बहुत काल रहेगी,
बहुत काल तक, परंतु अनादि अनंत मिट्टी ही रहेगी क्या उसकी? नहीं रहेगी। तो मिट्टी रूप जो परमाणु है वो अन्य रूप हो जाएंगे। किसको? नहीं, केवल ज्ञान तो अर्थ पर्याय है, एक एक समय की है, वैसा लंबा काल नहीं लेना उसका। केवल ज्ञान के एक 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 समय के एक एक पर्याय, वो अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय। सिद्ध पर्याय को स्वभाव व्यंजन पर्याय कहा है, पूरे सिद्ध पर्याय, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय लंबे काल तक चल रही है। केवल ज्ञान ही कहो तो चलेगा, केवल ज्ञान जब कहेंगे तो ज्ञान गुण की अकेली एक समय की पर्याय होगी। हाँ हाँ वो इतनी सूक्ष्मता होती है ना उसमें, जितनी चर्चा करेंगे तो उतना समझ में आता है। देखो ये पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक क्यों कहा? द्रव्यार्थिक अन्य की अपेक्षा जो सत द्रव्य था उसी सत द्रव्य की पर्याय रूप से उत्पत्ति हुई है, इसलिए जो कार्य के कार्य को कहा ना, सत जो था वही उत्पन्न हुआ। किस अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा वो सत था, परंतु वो घट घट रूप से सत नहीं था। घट है वो मिट्टी रूप से सत था, पुद्गल रूप से सत था। अब वो पुद्गल और मिट्टी की ही घट रूप अवस्था हुई है, परंतु कार्य को सत मानने वाले सांख्यमति वो घट रूप से ही था, बस उसका अभी आविर्भाव तिरोभाव हो गया ऐसा कहते, ये उनका कन्फ्यूजन है। हम तो जैनी है ना, हमारा ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हम तो अपेक्षा समझते हैं। अब ये समझने के लिए उनका क्या गलत मत है वो सीखना पड़ता है हमको, इसलिए वो जल्दी बैठता नहीं है। अब ये पर्यायार्थिक नहीं कि अपेक्षा क्या लगाए कि जो असत था वही उत्पन्न हुआ, तो पुद्गल और मिट्टी तो थी, मतलब अभी हम द्रव्य की बात नहीं कर रहे, हम पर्याय की ही बात करेंगे। वो मिट्टी की पिंड रूप अवस्था थी, वो पिंड अवस्था का नाश हुआ, उसमें कोई घट नहीं था, पिंड अवस्था में घट नहीं था, और जो नहीं था वो अभी घट उत्पन्न हुआ है, यह पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा है। पर्याय जो नहीं थी वो उत्पन्न हुई है, और द्रव्यार्थिक नय में जो द्रव्य था वो द्रव्य ही रहा, उसकी पर्याय पलटी। ये सत कथनचित सत और कथनचित असत, ये दो अपेक्षा हुए। तीसरे में क्रम से हम दोनों को कह सकते हैं, द्रव्यार्थिक नहीं क्या है, क्रम से विधि और प्रतिषेध की कल्पना की गई है, जानने के लिए कोई क्रम नहीं पड़ता है। तो जो ऐसा हम कहेंगे ना, जो द्रव्य की अपेक्षा सत है वही पर्याय की अपेक्षा असत था, वो उत्पन्न हुआ है। द्रव्य तो था उसी की अवस्था पलटी, परंतु पर्याय की अपेक्षा जो नहीं थी वो हो गई। क्रम से हमने विधि और प्रतिषेध किया है, हमें विधि और प्रतिषेध अस्थि रूप और नास्ति रूप कहना है तो उसमें क्रम तो पड़ेगा, बराबर। ये तीसरी अपेक्षा हुए, तीसरा भंग हुआ। 32 पृष्ठ पर आते अभी। देखो ये तीसरा फिर पढ़ते, कथनचित घट सत्व असत उभय स्वरूप है, ये कथनचित लगाया, तो उभय मान्यता वाले एकांत पक्ष वाले भी थे, उन्होंने दोनों को एकांत सर्वथा मान लिया था। यहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा क्रम से विधि व प्रतिषेध की कल्पना किए, यह द्रव्यार्थिक की अपेक्षा विधि और पर्यायार्थिक की अपेक्षा प्रतिषेध। क्रम यानी अनुक्रम से दो नए बताए, तो दोनों नए से कौन सा क्रम लगता है, तो द्रव्यार्थिक नए के लिए विधि लेना और पर्यायार्थिक नए के लिए प्रतिषेध लगाना। कारण कि यदि ऐसा न माना जावे तो फिर घटादि वस्तुओं में क्रमशः होने वाले सत्व असत रूप विकल्प के व्यवहार का विरोध होगा, विकल्प क्रम से हो रहे हैं। फिर देखो क्या कहते, यदि ऐसा नहीं मानेंगे कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा विधि और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा प्रतिषेध, इसको नहीं मानेंगे तो घटादि वस्तुओं में कोई भी कार्य है उस संबंध में क्रमशः जो सत्व असत रूप विकल्प होते हैं उस व्यवहार का निषेध होगा। ऐसे विकल्प हम नहीं कह सकते, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं राग रूप नहीं हूँ, कोई भी विकल्प है, अभी वो यहाँ घटित नहीं होता है, यहाँ तो सत और असत एक ही कार्य पर घटित कर रहे हैं। मैंने तो एग्जाम्पल अलग दिया आपको, विकल्प कैसे कैसे होते उसके लिए बात यहाँ। अब चौथा पॉइंट, कथनचित घट अवक्तव्य है, इसमें युगपत विधि व प्रतिषेध की कल्पना की गई है। युगपत जब वस्तु में युगपत है परंतु विकल्प में या कथन में क्रम से ही होगा, अक्रम से नहीं हो सकता, एक साथ युगपत उसका कथन नहीं हो सकता। चूंकि सत्व असत रूप दोनों धर्मों को एक साथ सूचित करने वाला कोई भी शब्द संभव नहीं है, आप सत असत कहो या असत सत कहो, क्रम तो पड़ेगा। अतएव उस अवस्था में वस्तु को अवक्तव्य मानना उचित ही है। तो कारिका में तो ये चार बताए थे, अब कहते च शब्द से सूचित शेष तीन भंग, पांचवा है कथनचित। देखो अवक्तव्य का शब्दशः अर्थ होता है जो बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, उसको अवक्तव्य, वक्तव्य करना यानी बताना बोलना। तो विधि और निषेध, सत और असत, क्रम से तो हम बोल सकते हैं, क्रम से उसका कथन कर सकते हैं, विकल्प हो में आ सकता है, परंतु दोनों का एक साथ कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता। इसलिए युगपत नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य कहा।
यहाँ उनका ऐसा कहना है कि दोनों को एक साथ कहने वाला कोई शब्द ही नहीं है, यानी जैसा मान लो किसी माता को दो बेटियां हैं तो उन बेटियों के नाम बताओ बोलेंगे तो एक के बाद दूसरा आएगा, दोनों एक साथ नहीं कह पाते। वैसे सत और असत ये दो धर्म है, उन दो धर्मों को एक साथ कहने वाला कोई तीसरा शब्द ही नहीं है, युगपत कहने वाला कोई शब्द नहीं, क्रम से हम कह सकते हैं। तो क्रम से कहने वाला तीसरा पॉइंट है, अवक्तव्य है वो चौथा पॉइंट है।
कहने की बात है, एक साथ कथन, युगपत कथन नहीं हो सकता, उसको अवक्तव्य कहा है। अब आगे भी जो है ना वो भी अवक्तव्य के ही और संयोग वाले भंग लिए। तो पहले सद बताया, अब कहते हैं सत बताने के बाद एक साथ दोनों बताओ, तो नहीं हो सकता, इसलिए सत अवक्तव्य कहेंगे। फिर कहेंगे हम असत तो हमने बता दिया, तो एक साथ दोनों को बताओ, नहीं बता सकते, तो असत अवक्तव्य हो जाएगा। फिर हमने कहा क्रम से सत असत है, अब दोनों को एक साथ बताओ, नहीं हो सकता, तो वो सत असत अवक्तव्य है। ये पाँचवा, छठा और सातवा, अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे पाँचवें नंबर का। कथनचित घट सत व अवक्तव्य है, यहाँ विधि के साथ ही, यानी विधि को तो अलग से बता दिया और उसके साथ युगपत विधि व प्रतिषेध की कल्पना की गई है। सत को तो बता दिया, अब युगपत दोनों को बताओ तो नहीं हो सकता, हाँ नहीं बता सकते। अब कहते कथनचित घट असत व अवक्तव्य है, यहाँ प्रतिषेध के साथ युगपत विधि व प्रतिषेध की कल्पना की गई है, नहीं हो सकता। सातवें नंबर पर कथनचित घट सत असत व अवक्तव्य है। सत असत क्रमशः तो हो सकते हैं, बता दिए हमने, अब एक साथ बताओ तो नहीं बता सकते। यहाँ क्रमशः विधि व प्रतिषेध की कल्पना के साथ युगपत भी विधि व प्रतिषेध की कल्पना की गई है। इस प्रकार ये सात वाक्य ही संभव है, इसमें और कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेन बातें तीन ही है, सत है, असत है और अवक्तव्य है। उनको प्रत्येक को एक एक को रखा, तीन भंग हो गए, और फिर जोड़ी जोड़ी में रखा, द्विसंयोगी भंग किए उनके, तो भी वो और तीन हो गए, तीन तीन छः हो गए, और तीनों का मिलकर एक हो गया। इस प्रकार सात ही भंग होते हैं। तीन है ना, तो दो गुना दो गुना दो, जितने मेन चीजें हैं सिंगल उतनी बार दो लिखो, आपस में गुना करो और एक माइनस करो। जैसे हमारे पास ये श्रुतक के अक्षर है 64, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते, कोई वो एक सिंगल शब्द ले लो, अक्षर ले लो, शब्द भी नहीं अक्षर, फिर दो दो का संयोग, तीन तीन का संयोग, चार चार का संयोग, तो 64 है ना, 64 बार दो 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 गुना करो, हाँ, और उसमें से एक माइनस करो, तो 64 जिसका अर्धच्छेद है, ऐसी कौन सी संख्या आपको मालूम है क्या, जिसका अर्धच्छेद है इकट्ठी, तो इकट्ठी माइनस वन, इतने अपुनरुक्त अक्षर हो गए द्वादशांक के। यानी जैसे हमने ह ब एक बार बताया, तो एक बार काउंट करना, बाकी जो है उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से लेना। किस में, हाँ हाँ, अच्छा समझा है उसमें, हमें ऐसा लगता है ना इतना बड़ा जोड़ जोड़ का अक्षर कैसा होगा, परंतु उसमें क यानी वो आधा क प्लस अ क पूरा हो गया, और फिर उसके साथ और जो कुछ है, तो इस तरह से हम क का उसको तो नहीं जोड़ाक्षर से ही समझते ना, हम तो सादा समझते थे, उसमें भी वो सारे आ गए। ये पहले बात हुई थी अपनी यहाँ पर, अरविंद भाई को भी वो याद आ गया। हाँ देखो, इस प्रकार ये सात वाक्य संभव है। ऊपर के पैराग्राफ में नीचे के नीचे से दूसरी लाइन, प्रथम द्वितीय और चतुर्थ भंगों में दो अथवा तीन के संयोग से उत्पन्न वाक्य इन्हीं में अंतर्भूत होंगे, उनसे भिन्न संभव नहीं है। अब इसके अतिरिक्त एक से अनेक कर्मों की उत्पत्ति विरुद्ध है, ऐसा कहना भी अयुक्त है। ये प्रश्न कहाँ से निकला था मालूम है क्या, इतनी सारी चर्चा की, प्रश्नकार ने शंकाकार ने पूछा था, एक कर्म से उत्पत्ति होती है और जो कर्म है वही उत्पन्न होता है, अकर्म से कर्म नहीं होता, ऐसा उसका कहना था, वहां से वो सब सत असत की चर्चा निकली थी। देखो निकालना, जो है उसी में से उत्पन्न होता है, ऐसा उसका कहना था। ये प्रक्रम अनुयोग द्वार में स्टार्टिंग में देखो 16 नंबर के प्रश्न पर, वहां शंकाकार ने शंका पूछी थी, देखो फिर पढ़ती हूँ मैं वहां से शंका। यहाँ शंकाकार कहता है, जिस प्रकार कुमार मिट्टी के एक पिंड से अनेक घटादिकों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष नपुंसक स्थावर त्रस अथवा जो कोई भी जीव एक प्रकार के कर्म को बांध कर उसे आठ रूप करता है, क्योंकि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति का विरोध है। यानी वो सांख्य मत वाला जैसा इसका, वो कर्म रूप से कर्म रूप होता है, परंतु वो यही भूल जाता है कि उसने एक कर्म तो बांधा ना, तो जो एक कर्म बांधा वो अकर्म में से तो कर्म किया, कारमान वर्गना अकर्म रूप थी, उसको तो कर्म रूप परिणाम आया, परंतु वो भूल जाता है और कहता है एक कर्म बांधा उसमें से आठ कर्म हुए। ये वहां से ये सारी चर्चा चली थी। अब यहाँ आते हम, कहते हैं यानी इतनी तो चर्चा की, इसके अतिरिक्त यानी इनके अलावा एक से अनेक कर्मों की उत्पत्ति विरुद्ध है ऐसा कहना भी अयुक्त है, क्योंकि आठ कर्मों की योग्यता अनुसार आठ भेद को प्राप्त हुई अनंतानंत संख्या रूप कार्मण वर्गणा को एक मानने का विरोध है। उसका कहना था एक से अनेक उत्पन्न होते हैं, तो कहते उसको एक मानो ही मत। क्यों नहीं मानना एक? क्योंकि जिससे उत्पन्न हुआ था ना वो कर्म, वो कार्मण यो वर्गणा ही अनेक प्रकार की है। हम क्या मानते थे, कार्मण वर्गणा से कर्म आता है और फिर वो आठ में विभाजित हो जाता है, ये तो सामान्य कथन ऐसा ही है। परंतु मूल में क्या, जो आठ ज्ञानावरण रूप होने योग्य जो कार्मण वर्गणा थी वही ज्ञानावरण रूप हो गए, मिथ्यात्व रूप होने योग्य जो कार्मण वर्गणा है वही मिथ्यात्व रूप परिणमित हुए। पूरी कार्मण वर्गणा एक जाति की नहीं, उसी में अनेक जाति है। क्या कहा, आठ कर्मों की योग्यता अनुसार आठ भेद को प्राप्त हुई, यानी उसके मूल तो आठ भेद है और कितनी संख्या है, अनंतानंत संख्या रूप कार्मण वर्गणा, उसको एक नहीं मान सकते। अनंतानंत कार्मण वर्गणा का ग्रहण होता है ना। दूसरी बात, एक से अनेक कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती ऐसा एकांत भी नहीं है। कोई एकांत से ऐसा मान लेता है कि एक से अनेक कार्य नहीं उत्पन्न होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। उसलिए दृष्टांत देते हैं, क्योंकि एक घट से अनेक खप्परों की उत्पत्ति देखी जाती। सर्वत्र एकांत का निषेध करते आए हैं, कहां भी है। कम्मम न हो दियेयम अनेय विहमेय बंध समकाले मूलोत्तर पयडीनम परिणाम वसेन जीवाणम। जीवों के परिणाम के वश, परिणाम वसेन जीवाणम, क्या कहते हम नीचे पढ़ेंगे। कर्म एक नहीं है, कम्मम न होदियेयम, वह जीवों के परिणामानुसार मूल उत्तर पयडीनम, मूल व उत्तर प्रकृतियों के बंध के समान काल में ही अनेक प्रकार का है, यानी जब बनता है तभी अनेक प्रकार का है। स्पष्ट रूप से बता दिया ना, बंधने के समय में ही वो अनेक प्रकार का है, कार्मण वर्गणा ही अनेक प्रकार की है। हमें लगता है पहले बंध हो गया और फिर बाद में उसका विभाजन हुआ, ऐसा नहीं है। जीव परिणामों के भेद से ये अनेक प्रकार का क्यों है, क्योंकि जीवों के परिणाम भी अलग अलग है। बंध के कारण जो मिथ्यात्व विरति आदि जो है, कषाय है, योग है, वो भी अलग अलग प्रकार के हैं जीवों के परिणाम। तो जीवों के परिणामों के भेद से और परिणमाई जाने वाली कार्मण वर्गणाओं के भेद से जीवों के परिणाम भी भिन्न भिन्न है। और अलग अलग जीवों के परिणाम अलग अलग है, एक जीव के अलग अलग समयों में परिणाम अलग अलग है। तो परिणामों के भेद से जो कर्म बंधेंगे, कर्म भी अनेक प्रकार का होगा। अब यहाँ जो समकाल कहाँ है, एक ही काल में कर्म बनते हैं, एक समय में कोई एक परिणाम है जीव का, और वहाँ कर्म रूप होने वाली वर्गणाएं अलग अलग प्रकार की है। दूसरा कोई जीव है उसके परिणाम भिन्न है। इस तरह से जीव परिणामों के भेद से और परिणमाई जाने वाली कार्मण वर्गणाओं के भेद से बंध के समकाल में ही जिस समय बनता है उसी समय कर्म अनेक प्रकार का होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। एक जीव के भी अनेक प्रकार का कर्म है, क्यों, कार्मण वर्गणा भी अलग अलग है और वही जीव अलग अलग समयों में अलग अलग परिणाम भी करता है। हाँ, कर्म अनेक प्रकार के, अनेक अलग अलग प्रकृतियां हैं, उतने प्रकार के कर्म हैं। मूल और उत्तर दोनों लिया उन्होंने। अब उत्तर उत्तर तो केवल ज्ञानी जानते हैं ना, उसमें भी हम स्थावर नाम कर्म कहते केवल, तो उसमें भी पांच स्थावर अलग अलग हो गए, तो उसके भी अपने अपने नाम कर्म अलग हो गए। हाँ, एक परिणाम का एक पैकेज नहीं है, उसमें भी कितने वेरिएशन है हमने देखे थे ना। एक समय के परिणाम में योग अलग है, अनुभाग बंधे अध्यवसान है, कषाय अध्यवसाय स्थान है, स्थिति बंध के परिणाम है। अब उसको सबको ले लो। हाँ, वर्गण, हाँ, परिणाम में भी है और वर्गणा भी अनेक प्रकार की पड़ी है। हाँ, परिणाम के ही अंदर, क्योंकि वर्गणा तो पड़ी है, सब जाति की पड़ी है। अभी आयु के कर्म भी पड़े हैं, हर समय क्यों नहीं ग्रहण करता जी? और अनंत अनंत कर्म परमाणु पड़े हैं, कारमाण वर्गण है, उसमें से थोड़ी ही क्यों लेता है? शंका, मूर्त कर्मों का अमूर्त जीव के साथ संबंध कैसे हो सकता है? प्रश्न क्या है? ये मूर्त का मूर्त के साथ बंध होना तो स्वीकार है, परंतु अमूर्त के साथ क्यों बनता है? समाधान, नहीं, क्योंकि अनादिकालीन बंधन से बद्ध रहने के कारण जीव का संसार अवस्था में अमूर्त होना संभव नहीं है। क्या कहा है? संसारी जीव को मूर्त कहा है, पुद्गल भी कहा है, रूपी कहा है उसको। ये सम्यक तो मार्गण है ना, समय ज्ञान दीपिका, समय ज्ञान चंद्रिका में, वहाँ जीव दो प्रकार के कहा है, मूर्तिक अमूर्तिक। संसारी को मूर्तिक कहा है, क्यों? अनादि से ही बंध अवस्था में पाया जाता है, वो कभी पुद्गल के बंध के बिना पाया ही नहीं जाता है। तो वो जो पुद्गल से बंधा हुआ जीव है, उन पुद्गलों में नए नए पुद्गल आके मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो हम कहेंगे जीव के साथ जुड़ते हैं। यही बात यहाँ बताते हैं कि अनादि से बंधन से बद्ध रहने के कारण जीव का संसार अवस्था में अमूर्त होना संभव नहीं है। फिर शंका, अनादि बंध का परिज्ञान किस प्रमाण से होता है? वह अनादि से बंधा है, ये बात कैसे जानी जाती है? समाधान, चूंकि जीव और शरीर का वर्तमान बंध अनादि बंध के बिना बन नहीं सकता। शरीर का संबंध तो नया नया है, परंतु इसका जो बंध है वो अनादि बंध कोई है वहाँ, इसीलिए इसका संबंध बन सकता है, अन्यथा नहीं। अतएव इस अन्यथा अनुपपत्ति रूप हेतु, हेतु क्या दिया? कि अन्यथा वो अनुपपत्ति यानी वो उत्पत्ति होने में समर्थ नहीं है, नॉट अदरवाइज पॉसिबल, इसलिए उसका ज्ञान हो सकता है। शंका, अभी बड़ी शंका है इसकी। वर्तमान बंध को घटित कराने के लिए पुद्गल के समान जीव को भी रूपी कहना योग्य नहीं है, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर जीव और शरीर दोनों चूंकि महान परिमाण वाले हैं और रूपी भी है, अतएव वे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं। क्या कहते हैं? यदि हम जीव को रूपी कहेंगे तो रूपी पदार्थ इंद्रियों से जाना जाता है, ऐसा जीव भी जाना जाएगा, इसलिए उनके रूप रस गंध और स्पर्श के अलग अलग ग्रहण होने का प्रसंग आता है। यानी जीव के स्पर्शादि अलग से ग्रहण हो गए और शरीर के अलग से ग्रहण हो गए, दोनों मूर्त है ना। दूसरे, जीव द्रव्य को इस प्रकार से रूपी स्वीकार करने पर उसका अस्तित्व ही संभव नहीं है, क्योंकि जो रूपी है वे पुद्गल है। इस सूत्रोक्त लक्षण के अनुसार, हमने सूत्र में ही पढ़ा था, रूपी है वो पुद्गल द्रव्य है। अभी जीव को भी रूपी कहेंगे तो उसको भी मानने से जीवों का पुद्गलों में अंतर्भाव हो जाता है। तीसरे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के असाधारण गुण रूप से परिणत भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति अत्यंताभाव के द्वारा रोकी जाती है। अभी अभी सीखा है ना अत्यंताभाव, द्रव्यों के असाधारण लक्षण कौन से हैं? ये स्वयं ही अभी पूरी शंका उठा रहा है ना, तो स्वयं ही बता रहा है। जीव द्रव्य का असाधारण लक्षण चेतना, पुद्गल द्रव्य का रूप रस गंध स्पर्श, आकाश द्रव्य का अवगाहन, धर्म द्रव्य का जीवों और पुद्गलों के गमनागमन में निमित्त कारणता, अधर्म द्रव्य का उक्त जीवों और पुद्गलों के अवस्थान में निमित्त कारणता, तथा काल द्रव्य का असाधारण लक्षण द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कारण होता है। अब द्रव्य किसे कहते हैं? ये लघु सिद्धांत प्रवेशिका आ गई है। ये हमने तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते यह सीखा था। अभी जरा परिभाषा याद करना। ये अपने असाधारण स्वरूप को न छोड़कर दूसरे द्रव्यों के असाधारण स्वरूप का परिहार करते हुए, अभी हमने अत्यंता भाव में देखा था ना, दूसरे गुणों के असाधारण गुणों रूप वो नहीं होता है और अपने असाधारण को स्वरूप को नहीं छोड़ता है। जो उन पर्यायों को वर्तमान में प्राप्त होता है, यानी अपने अपने पर्यायों रूप परिणमन करता है, यानी गुण पर्यायवत द्रव्यम हो गया, भविष्य में प्राप्त होगा वह भूतकाल में प्राप्त हो चुका है, वह द्रव्य कहलाता है। यानी द्रव्य अपने असाधारण गुणों से युक्त है। साधारण तो सब में ही है, नहीं आपका ऐसा कहना है यहाँ असाधारण गुणों के परिणमन को ही द्रव्य कहेंगे, ऐसा कहाँ कहा? उन पर्यायों को प्राप्त होता है, उन यानी असाधारण पर्यायों को होता है, ऐसा कहाँ? अपने अपने पर्यायों को प्राप्त होता है। हाँ, विशेष गुण, क्योंकि हम जीव द्रव्य कैसे कह सकेंगे, तो उसके अपने असाधारण गुण है, इसीलिए तो कहेंगे उसको। इसलिए जीव अमूर्तिक ही है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के जो रूप और रसादिक असाधारण गुण हैं, उनके स्वरूप से उसका परिणमन हो नहीं सकता। हमने अत्यंता भाव के डेफिनेशन में अभी भी पढ़ा था, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के असाधारण गुण रूप से परिणमन नहीं हो सकता अपने गुण छोड़कर। तथा मिथ्या तो असंयम कषाय और योग से, ये जगह छूटी है, ये जीव से अभिन्न होकर, नहीं योग ये फिर से, तथा मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग ये जीव से अभिन्न होकर उससे पृथकभूत कार्मण वर्गणा के स्कंधों के परिणामांतर यानी रूपित्व को कैसे उत्पन्न करा सकते हैं? क्या कहा, जीव अपने मिथ्यात्व वगैरह भाव छोड़कर वो रूपीपना को कैसे प्राप्त होता है, या उसको कार्मण वर्गणा के स्कंदों का परिणाम बदल दिए ना, उसकी पर्याय बदल दी, ये जीव कैसे कर सकता है, ये प्रश्न है पूरा। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अग्नि में स्थित दहन गुण के निमित्त से बत्ती में रहने वाले तेल का कज्जल के आकार से परिणाम पाया जाता है। क्या कहा, पहले वो तो तेल के और घी के दीपक होते थे ना, तो यहाँ तो तेल का उदाहरण दिया है, तो बत्ती में तेल होती है और वो कपास की वात होती है, तो जलता है तो क्या है, तेल कम होता है ना, वो तेल जल रहा है ना, और वो जो फ्लेम है, दीपक है, लो जो है, उसके ऊपर वो कज्जल उत्पन्न होती है, उसमें से धुआं निकलता है और ऊपर कुछ बर्तन है कुछ है तो उसमें वो काजली आती है, तो तेल का काजल रूप से वहाँ परिणमन हो रहा है, कज्जल रूप से कहा भी है, और इसके लिए अभी ऊपर वो बताते हैं।
तो अग्नि में दहन गुण, तो जीव में राग और द्वेष, और उसके कारण ये से रहना पड़ेगा उद्गल का वो परिणमन होना।
हाँ, वो उदाहरण के लिए आगे उसको भी बताएंगे, अभी इसी कारिका में ये इसी श्लोक में बता रहे हैं। राग द्वेषाद युष्मा संयोग वर्त्यात्म दीप आवर्ते स्कंधानादाय पुनः परिणमयति तांश्च कर्मतया। संसार में राग द्वेष रूपी उष्णता से संयुक्त वह आत्मा रूपी दीपक योग रूप बत्ती के द्वारा कार्मण वर्गणा के स्कंदों को ग्रहण करके फिर उन्हें कर्म स्वरूप से परिणमाता है। हमने क्या देखा था, अग्नि जो है, उदाहरण कैसे दिया, अग्नि में दहन यानी जलाने का गुण है, तो वो जलाने क्या करे, वो तेल है उसमें वो वात है, बत्ती कहा उसको, और फिर उसमें वो जलाती है तो क्या होता है, तेल का कज्जल रूप से परिणमन होता है। यहाँ भी रूपी का ही रूपी रूप हो रहा है, कार्मण वर्गणा का कर्म रूप हो रहा है, ये तो भिन्न ही रहा, वहाँ भी अग्नि तो भिन्न ही है, उसने तेल को कज्जल रूप बना दिया। नहीं नहीं उसकी बात नहीं, अभी ये मिथ्यात्व वो जो है उसके कारण वो कारमाण वर्गणा कर्म रूप क्यों हो रही है, ऐसा इसका प्रश्न पूछ। प्रश्न क्या था ऊपर देखो, जीव से अभिन्न है कौन, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग जीव से अभिन्न है, वो जीव के परिणाम है, तो उनसे जो पृथक ऐसी कारमाण वर्गणा वो तो भिन्न द्रव्य है, तो भिन्न द्रव्य कर्म रूप से कैसे परिणमित होता है। जीव भिन्न है उसमें उसकी पर्याय है मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, और कारमाण वर्गणा कर्म रूप हो रही है, ये दो भिन्न द्रव्य है, तो इसने जीव ने इसको किया ऐसा क्यों कह रहे हो, ये प्रश्न था। तो अग्नि भिन्न है और तेल भिन्न है, तो अग्नि ने क्या, तेल है वो कज्जल रूप बनाया, तो बत्ती को जलाने के द्वारा उसने किया ऐसा कहते हैं उसमें। ऐसे ही ये संसार में राग द्वेष रूपी उष्णता से ऐसा जो आत्मा लिया, उस संयुक्त आत्मा रूपी दीपक, अब बत्ती में वहाँ योग लिया, योग रूपी बत्ती के द्वारा कारमाण वर्गणा के स्कंदों को ग्रहण कर, हमने देखा ना योग उसी को कहते हैं, कर्म नौकर्म के ग्रहण करने की जो शक्ति होती है, आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है, कर्म नौकर्म आते हैं उसका ग्रहण होता है, तो ये योग द्वारा उसका ग्रहण कर फिर उन्हें कर्म स्वरूप से परिणाम आता है। शंका, यदि मिथ्यात्वादिक प्रत्ययों के द्वारा कारमण वर्गणा के स्कंद आठ कर्म रूप से परिणमन करते हैं, तो समस्त कारमण वर्गणा के स्कंद एक समय में आठ कर्म रूप से क्यों नहीं परिणत हो जाते हैं, क्योंकि उनके परिणमन का कोई नियामक नहीं है। यदि मिथ्यात्व अविरति आदि से कारमाण वर्गणा होती है तो इस विश्व के समस्त कारमाण वर्गणाएं परिणमित हो जावे, आप कहेंगे बाकी की नहीं हो सकती, तो जहाँ जीव स्थित है वहाँ की सभी कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होनी चाहिए थी, ऐसा भी नहीं होता, उसके लिए समाधान करेंगे। देखो ये बहुत महत्व की बात है, नहीं क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चार नियामकों द्वारा नियम को प्राप्त हुए उक्त स्कंधों का कर्म रूप से परिणमन पाया जाता है। ये जितनी चाहे कारमाण वर्गणा कर्म रूप नहीं हो सकती, तो क्या है उसमें कुछ लिमिटेशन है, और जहां की चाहे वहां के कारमाण वर्गणा हम यहाँ राग द्वेष करें और वहां हाँ हमारे ऑफिस की कारमाण वर्गणा यहाँ आपकी चिपक जावे, ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है उसमें, ये समझा रहे। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सभी नियामक हो गए उसमें, वो कौन कौन से नियम हैं, द्रव्य में क्या नियम है, क्षेत्र में क्या है, काल की अपेक्षा क्या है, भाव की अपेक्षा, वो बता रहे। यथा द्रव्य की, वो द्व हुआ है द्र करना, द्रव्य की अपेक्षा अभव सिद्धि जीवों से अनंत गुणी और सिद्ध जीवों के अनंत वे भाग मात्र ही वर्गणाएं एक समय में एक जीव के साथ कर्म स्वरूप से परिणत होती है, चाहे जितनी नहीं होगी, एक समय का जीव का जो परिणाम है तो कितनी वर्गणाएं कर्म रूप होगी, अभव्यों से अनंत गुणे सिद्धों के अनंत वे भाग, इतनी ही वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होगी। ये द्रव्य ने संख्या की अपेक्षा बता दिया, क्षेत्र की अपेक्षा दे, ये हमारे लिए नया पॉइंट है। क्षेत्र की अपेक्षा जीव के द्वारा अवगाह को प्राप्त क्षेत्र में स्थित, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मैंने देवलाली में ये बताए थे कि जीव जहाँ जिस उसके अवगाहना में जितने होते वही टर्न होते, तो अन्य किसी ने बताया ऐसा नहीं होता, पूरे लोकाकाश में आकर उसके कर्म रूप से होते, परंतु यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जितने क्षेत्र में जीव स्थित है, लिखा ना, क्षेत्र की अपेक्षा जीव के द्वारा अवगाह को प्राप्त क्षेत्र में स्थित, वो भी कितनी, अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र अवगाहना वाली वर्गणाएं ही कर्म स्वरूप से परिणत होती है। उसकी अवगाहना भी कितनी होनी चाहिए, इतनी अंगुल के असंख्यात वे भाग हो, इतनी अवगाहना वाली वर्गणाएं होती है, पूरे क्षेत्र में जितना है उतना नहीं होती है। द्रव्य ने संख्या बताई, क्षेत्र बताया, अब काल अपेक्षा बताएंगे।
जीव है लोक प्रमाण संख्या, क्षेत्र है लोक प्रमाण
संख्या। नहीं नहीं नहीं, क्षेत्र अभी अभी का क्षेत्र कितना है? देह प्रमाण है ना? एक समय में उतनी ही हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकेंगे। काल की अपेक्षा एक समय से लेकर असंख्यात लोक मात्र काल के भीतर की कारमाण वर्गणा, भीतर की कारमाण वर्गणा स्वरूप से स्थित ही वे वर्गणाएं कर्म स्वरूप से परिणत होती है, शेष नहीं होती। क्या कहते हैं? ये कोई वर्गणाएं, कोई पुद्गल कारमाण स्वरूप से स्थित है कितने काल से, तो एक समय के लिए वो कारमाण वर्गणा हुआ है, कोई अन्य वर्गणा से वो कारमाण वर्गणा हुई है, हो सकता है वो कारमाणा वर्गणा रूप से ही पड़ा है। कितने काल से? असंख्यात लोक, हाँ कारमाण वर्गणा रूप से, शेष नहीं।
मतलब असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद में वो काल की अपेक्षा वो
नहीं, उतने वो कारमाण वर्गणा उस परिणमित होने योग्य होती है, इतनी बात की। जास्त काल या तो होगा नहीं या फिर वो कर्म रूप नहीं होगा, जो कुछ होना नहीं। आपने जो आपको जो याद है ना, आहार शरीर के परमाणु छूटकर विश्रसोपचय से रहने का काल आपको याद है, वो आपको वहाँ कर यानी औदारिक शरीर की बात थी, कर्म शरीर की बात थी, कारमाण वर्गणा की बात नहीं थी। शरीर से छूटे हुए परमाणु शरीर रूप से रहते हैं विश्रसोपचय के साथ, और यहाँ बात हो रही है कारमाण वर्गणा की। वहाँ भी आहार वर्गणा भिन्न है, और आहार शरीर अपने विश्रसोपचय के साथ जो छुटे हुए परमाणु तो पूरे लोक में फैल जाते हैं, उसकी बात अलग है, वो आपको याद आया है। हाँ, अब भाव की अपेक्षा कारमाण काल की अपेक्षा, अभी पुद्गलों का परिणमन अलग अलग होता है। कोई एक वर्गणा में वर्गणा रूप से है पुद्गल स्कंद पड़े हुए, उसमें से उसका विघटन होकर अन्य वर्गणा रूप हो सकता है, तो अधिक से अधिक वो कितने काल तक ऐसे उसी रूप से पड़ेंगे कारमाण वर्गणा, तो असंख्यात लोक प्रमाण काल है। तो कोई एक समय में ही अभी कारमाण वर्गणा बनी है तो उसको भी ग्रहण कर सकता है, और कोई असंख्यात लोक प्रमाण काल से वो कारमाण वर्गणा रूप से ही स्थित है तो उसको भी ग्रहण करेगा, वो विकल्प बीच में सब कुछ है पड़े हुए। भाव की अपेक्षा कारमाण वर्गणा पर्याय रूप से परिणत ही वे कर्म स्वरूप से परिणत होती है, शेष नहीं। क्या कहते? कोई भी वर्गणा कर्म रूप नहीं हो सकती, कोई भी पुद्गल किसी भी रूप में से कर्म रूप नहीं हो सकते। भाव की अपेक्षा जो कारमाण वर्गणा रूप से है वे ही कर्म रूप हो जाएंगे, ये उसका भाव हुआ। देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये पूरा ही अपने लिए नया प्रमेय है। हमने इतना तो देखा था ना कि एक समय में जो इतना लेता है ऐसा हमने तो लेता है, अब तक तो ऐसे समझाते ना बाहर से आता है ऐसा ही लगता था, उसी क्षेत्र में जो है तो वो उस रूप परिणमित हो जाता है, कहा भी है। अब आगे की गाथा पढ़ेंगे, ये 19 नंबर की। एयखे तो गाढ़म सौवपदे से ही कम मनोजोगम बंधय जहुत्त हेउ सादियम हणादियम वावी। जीव एक क्षेत्र में अवगाह को प्राप्त हुए, यानी जीव का जो एक क्षेत्र है उसी में जिसकी अवगाहना है, यानी जीव के एक क्षेत्रावगाही रूप से जो स्थित है तथा कर्म के योग्य, ये कारमाण वर्गणा कर्म के योग्य है ना, ये कैसे है? सादी अनादि अथवा उभय स्वरूप पुद्गल प्रदेश समूह को, उस समूह बराबर करना, यथोक्त हेतुओं द्वारा, कौन से हेतु है अभी? हाँ, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, हाँ, अपने सब प्रदेशों से बांधता है सभी, ऐसा कोई रूट ऑफ एंट्री होगी कर्म की ऐसे नहीं है, सभी प्रदेशों से बांधता है। एक पुद्गल प्रदेश को सादी अनादि और उभय कहा, सादी यानी अभी उसने ग्रहण किए हुए उसको सादी कहेंगे, फिर अनादि और उभय दोनों ही हो सकते हैं। अनादि यानी उसने नहीं ग्रहण किए हुए,
एक क्षेत्र का लिया मतलब कि जो शरीर के में है उन्हीं में चले, बाहर से
नहीं लेता। इतने ही क्षेत्र में, बाहर से नहीं लाता, क्योंकि जीव यहाँ पर है उसके भाव हो जाते हैं और वहीं के कर्म रूप हो सकते पलट जाते हैं। संपूर्ण प्रदेशों में तो है ना,
तो बाहर से कब आते हैं जीव?
नहीं आते, वो जाते हैं शरीर। वो तो हम छोटे थे ना तभी ऐसा पढ़ते थे। हम तो नाव में बाहर से पानी आता है वगैरह कहते थे। कोई मिले थे ना उनको तो उन्होंने बताया, हम तो ऐसा ही आज तक वो नाव में ही आश्रय बंद घटाते थे निर्जरा।
नहीं तो जैसे अपने डेथ हो गई और उसके जो अपना कार्बन शरीर गया तो वही रहता हमेशा, जो कार्बन शरीर रहा
वो कहाँ गए? वो तो अपने साथ हुआ,
अपने साथ ही गया वो, करता उसी में से अपन भाव करके फिर वापस मतलब
वो कार्बन शरीर हुआ। कार्मान शरीर में से कुछ नहीं लेता, वो कर्म है, वो कार्मान वर्गणा है, कर्मरूप हो गई है। अब वो कर्मरूप हुई है तो वो कर्म शरीर और उसके विश्रसोपचय छूटेंगे, उसमें यथा योग्य जो कुछ परिणमन होगा।
मतलब बिना शरीर के जो आत्मा है,
हाँ विग्रह गति में औदारिक शरीर नहीं है, कार्मान शरीर है, वो तेजस है, कार्मान है, हाँ दो शरीर है वहाँ पर। और वहाँ नया कार्मण यानी वो परमाणुओं का ग्रहण भी चल रहा है,
वहाँ पर भी है वो वैशेषिक माल हमारा वो पड़ा हुआ।
हाँ बिल्कुल, विश्रसोपचय के साथ ही जाता है जी विग्रह गति में। हाँ उसके एक क्षेत्र में जितना स्थित है कहीं पर हो जीव, हाँ अभी उसमें विश्रसोपचय रूप से भी पड़े होंगे कार्मण, हाँ कार्मण वर्गणा रूप से जो कुछ है वहाँ पर उसमें से वो चेंज होता है। हाँ विश्रसोपचय तो कितना, एक परमाणु के साथ जीवों से अनंत गुणे, जीव राशि से अनंत गुणे, इतने विश्रसोपचय एक एक परमाणु के साथ है। ये अनंतता पता नहीं लगती ना, यही रुकेंगे अभी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। अश्विन भाई